السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفي عبد الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. आप लोगों को मुरक्कबात को रिवाइज करने का मैंने कहा था, सॉर्ट ऑफ होमवर्क था आप लोगों का, क्योंकि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ओरली हम इसको जज करेंगे क्लास में क्वेश्चंस करके. तो अगर किसी को मुरक्कबात के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल करना चाहता हो, तो आप क्वेश्चन कर लें. और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे जाएंगे. हाँ जी, इस दफा हम ओरली ही करेंगे क्वेश्चंस करके, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें. जैसे अभी हम दुल्ला इस्मिया ही को आगे फर्दर देखते हैं. जैसे पहले हम लोगों ने जुमला इस्मिया में ताकीद का मफहूम पढ़ा, उसमें जैसे हमारे पास इन्ना एक हर्फ आया था, तो हमने उसी हवाले से कुछ और ग्रुप भी देखे जो इन्ना ही के जैसे हैं. इन्ना हवाती है या शुरू मुशब्बा बिल्फेल. तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो जुमला इस्मिया में हसर का मफहूम है. अब आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, तो हमारे पास अब जो जुमला इस्मिया ही से रिलेटेड चीज़ है वो है जुमला इस्मिया में तख़सीस का मफहूम या हसर का मफहूम. अब तख़सीस और हसर क्या चीज़ है कि आप जब जुमला इस्मिया में किसी भी मफहूम को पैदा करते हैं या कोई भी जो उस जुमले में आपको मुब्तदा खबर होती है तो उसको आप कैद कर देते हैं सिर्फ उसी के अंदर. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में मिसाल दी थी इन्नमल मुस्लिमून इख्वतुन, इस वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि हसर का मफहूम है. तो यानी मुसलमान भाई भाई हैं और इन मुसलमानों के बीच में दूसरा और कोई एलिमेंट नहीं पाया जाता, सिर्फ भाई भाई हैं. ये आप उस चीज को तख़सीस कर रहे हैं, खास कर दिया आपने मुसलमानों के साथ कि वो इख्वा हैं और उनके बीच में और कोई चीज नहीं है. तो इसी तरह जैसे अगर हम एक सेंटेंस को देखें कि जैसे अल्लाहु गफूरुन, इसमें हमारे पास सिंपल मुब्तदा और खबर आ रही है कि अल्लाह ताला गफूर जो फाउल के वजन पे है, इसी से रिलेटेड हमने कनूद एक वजन पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत मुबालगा पाया जाता है. तो इसी तरह अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, माफ करने वाला है. तो यहां पर हमारे पास जो खबर है वो उसमें बहुत मुबालगा पाया जाता है, अल्लाह ताला की जो ये गफूर सिफत है. तो इसमें अगर हम हसर पैदा करना चाहते हैं इस सेंटेंस में तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये कि हमारे पास जैसे हमने जुमला इस्मिया में देखा था कि हमारी मुब्तदा मारिफा होती है आम तौर पे और जो हमारी खबर होती है वो नकेरा होती है. तो इसमें हमारे पास जो तख़सीस का कायदा है या हसर का कायदा है उसमें हमारी जो खबर है उसको हमें मारिफा करना होता है. यानी आम तौर पे हमारी जो खबर थी वो नकेरा थी, लेकिन जब हम तख़सीस के कायदे में आएंगे तो तख़सीस के लिए हमें अपनी जो खबर है उसको हालत रफ मारिफा लेके आना होगा. जैसे अल्लाहु गफूरुन, इसमें हमने अल्लाहु के बाद अल गफूरु लिखेंगे हम. फिर जाहिर है जब हम उसको अलिफ लाम तनवीन के साथ लेकर जाएंगे तो उसकी एक दम्मा ख़त्म हो जाएगी, दम्मतान के अलावा हम उसको सिर्फ एक दम्मा के साथ लिखेंगे. और इन दोनों लफ्जों के बीच में, मुब्तदा और खबर के बीच में, हमने क्या ऐड करना है? एक दमीर ऐड करनी है. और दमीर कौन सी ऐड करेंगे? जो हमारी हालत रफ की दमीर है वो हम ऐड करेंगे. जैसे हमने कुछ और दमायर भी देखे थे जो अटैच दमीर आती है, तो अटैच दमायर तो हमारे हालत नसब और हालत जर के लिए थे, लेकिन जो हालत रफ वाले दमायर हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ये वाला जो चार्ट है हालत रफ वाला, इसमें से हमने दमीर लेकर आनी है मुब्तदा और खबर के बीच में। अब जो हम दमीर लेकर आएंगे वो हमारी किसके मुताबिक होगी? मुब्तदा के मुताबिक। तो अब हम इस सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तख़सीस के कायदे के हिसाब से। तो अल्लाहु, अल्लाहु के बाद हम दमीर लेकर आएंगे तो हमारे पास कौन सी दमीर आएगी? हुआ की। अल्लाहु हुआ, और जो गफूरुन है उसको हमने मारिफा कर देना है, अल गफूरु। ठीक है, अल्लाहु हुवल गफूरु। अब यहाँ पे आप देखें कि पहले ही हमारे पास जो गफूर था वो मुबालगे का सीगा था, और अब इसमें तख़सीस भी आ गई है, हसर भी आ गई है कि अल्लाह ताला के बारे में हम एक तख़सीस इस सेंटेंस में हमें मिल रही है कि वो सिर्फ माफ करने वाला ही है। तो यहाँ पे इस गफूर के मीनिंग को और ज्यादा एक प्लस कर दिया ये हुवल गफूर ने तख़सीस के कायदे ने। ठीक है, फिर अब आप देखें कि हमारे पास जैसे हम लोगों ने जो सिफा मौसूफ का कायदा पढ़ा था उसमें हमारे पास ये चीज थी कि अगर हम दोनों को मारिफा करेंगे जो सिफा और मौसूफ है तो वो हमारे पास मुरकबे तौसीफी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम बीच में एक दमीर को ऐड कर देते हैं हालत रफ वाली दमीर को, उससे ये पूरा एक जुमला बन जाता है। अब आप देखें कि जैसे अगर हम अल कुरआनु हक्कुन, ये जुमला है मुब्तदा और खबर इसके अंदर है, लेकिन अगर हम ये कहें अल कुरआनुल हक्कु, तो यानी कुरान की सिफत आ रही है हक, सिफा जो सच्चा होना है कुरान का वो हम बता रहे हैं, तो अल कुरआनु अल हक्कु, ये हमारे पास जो तरकीब बन रही है ये सिफा मौसूफ की है, मुरकबे तौसीफी है। लेकिन अगर हम इसी के बीच में एक दमीर ऐड कर देंगे अल कुरआनु हुवल हक्कु, तो ये हमारे पास पूरा जुमला बन जाएगा। अल कुरान यानी कुरान के मुताबिक हमने दमीर लेकर आनी है कुरान के बाद, और फिर उसके बाद जो हक है उसको हमने मारिफा कर देना है अल हक को। सॉरी, अल कुरानु हुवल हक, ये हमारे पास जुमला बन जाएगा, और ये जुमला जो है इसके अंदर तख़सीस आ गई। अब इस जुमले का क्या मतलब? आप देखें अल कुरआनु हक्कुन यानी कुरान सच्चा है, ये एक आम जुमला है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अल कुरआनु हुवल हक्कु, तो कुरान सिर्फ सच है, कुरान सिर्फ हक है, यानी एक जो आप सिर्फ का मीनिंग लेकर आते हैं उर्दू में, तो वो चीज़ इसके अंदर आती है कि कुरान के अंदर सिर्फ हक बात ही है और कोई चीज़ नहीं है। तो ये आप तख़सीस कर देते हैं कुरान के हवाले से, एक चीज़ की आपने तख़सीस कर दी जब आपने ये कहा कि अल कुरआनु हुवल हक्कु। तो मेरा ख्याल है कुछ कुरान, हाँ जी, कुरान की सच्चाई को आप यानी आप ये कह रहे हैं ना कि आप अगर किसी और किताब के बारे में कहते हैं कि जैसे आम सेंटेंस में कि वो सच्ची किताब है, तो हो सकता है उसमें कोई आप इस चीज को तख़सीस कर रहे हैं, तो कुछ तख़सीस का जो मफ़हूम है वो आप लोगों के लिए मेरा ख्याल थोड़ा और क्लियर हुआ। इसी हवाले से जैसे हमारे पास तरह के शुरू में आती है। तो हम मिसाल के ऊपर थे, उलाइका मुफ्लिहून, ये हमारे पास जुमला इस्मिया है, इसमें उलाइका और मुफ्लिहून मुब्तदा और खबर आ रहे हैं हमारे पास, यानी वो लोग फलाह पाने वाले हैं। लेकिन अगर इसी जुमले में हम हसर का मफहूम पैदा कर दें तो इसमें फिर ये जुमला कैसे हो जाएगा कि उलाइका के एतबार से हम दमीर लेकर आएंगे, प्लूरल की जमा की दमीर हुम, और मुफ्लिहून को हमने कर देना है मारिफा अलिफ लाम के साथ, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हाँ जी बिल्कुल, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो इसमें फिर जो मफहूम पैदा हो रहा है, यानी इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में क्या फर्क आएगा, उलाइका मुफ्लिहून वो लोग फलाह पाने वाले हैं, और सिर्फ वही लोग फलाह पाने वाले हैं। जब हम ये कहते हैं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तो सिर्फ वही लोग फलाह पाने वाले हैं, इसमें फिर हसर का मीनिंग आ जाता है। ठीक है, और ये हमें मिसाल मिलती है सूरत अल बकरा की आया नंबर 5 में, कि जैसे कुछ अकायद से रिलेटेड हमें ईमान बिल गैब की बातें आती हैं, फिर नमाज कायम करना, ज़कात देना, और कुछ और आयात के बाद फिर हमें ये चीज़ मिलती है कि उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि वही लोग सिर्फ फलाह पाने वाले हैं। ओके ठीक, अब यहाँ पे देखें, हम लोगों ने पहले ये चीज़ देखी थी कि किसी भी साकिन लेटर को जब हम आगे मिलाते हैं, जैसे कोई भी साकिन इटसेल्फ लेटर आए तो उसको आगे मिलाने के लिए हमने क्या क्या कायदा पढ़ा था कि उसको हम जेर देके आगे मिलाते हैं। लेकिन हमने मिन की एक्सेप्शन देखी थी कि मिन को जब हम आगे मिलाना चाहते हैं तो नून की फतहा के साथ, नून को हम मफतूह कर देते हैं और फिर हम उसको मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक और एक्सेप्शन मिल रही है कि हुआ हुमा हुम, हुम का जो मीम है वो इटसेल्फ साकिन है, तो इसको जब हम आगे मिलाएंगे तो दमा देके, यानी हुम आपके पास जब भी आएगा उसको आप देखेंगे कि वो मदमूम होगा जब उसने आगे मिलना होगा। तो इस तरीके से आपने इसको दमा देके फिर आगे मिलाना है। अब अगर आप तख़सीस के मफहूम के साथ ताकीद और लामे ताकीद, इन्ना की जो ताकीद है उसको और लामे ताकीद को जब आप ऐड करना चाहेंगे तो उस जुमले की फॉर्मेशन और एराब किस तरह से होंगे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमने जो पहला जुमला किया था अल्लाहु गफूरुन, इसमें जब हम तख़सीस का मफहूम लेकर आए तो अल्लाहु हुवल गफूरु, और इस सेंटेंस के साथ अल्लाहु हुवल गफूरु के साथ अगर हम इन्ना की ताकीद और लामे ताकीद इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो कैसे होगा? इसमें हम पहले इन्ना जब हम लगाएंगे तो उससे हमारी जो मुब्तदा हमने देखा था कि जब इन्ना को हम ऐड करते हैं तो इस्मु इन्ना बनने के बाद मुक्तदा जब इस्मु इन्ना होती है तो वो हालते नसब में चली जाती है। तो सबसे पहला इफेक्ट किसके ऊपर होगा? अल्लाह के ऊपर, कि वो फतहा हालते नसब में चला जाएगा इन्नल्लाह। और लामे ताकीद हम ऐड करते थे खबर के साथ, लेकिन चूंकि अब हमारी खबर मरफू हो गई है तो हमने क्या करना है कि जो दमीर है उसके साथ हमने ऐड करना है लामे ताकीद को। तो हम हुआ के साथ लामे ताकीद ऐड कर देंगे, लहुवल गफूरु। इस तरह से हमारा जुमला बनेगा, इन्नल्लाहा लहुवल गफूरु। हाँ जी, गफूरुन नहीं होगा बल्कि सिर्फ एक दम्मा के साथ होगा, अल गफूरु, क्योंकि हमारे पास जो अलिफ लाम और तनवीन है वो किसी भी लफ्ज़ में इकट्ठी नहीं होती। ठीक है, फिर इसके बाद हमें सूरतुल बकरा ही में मिसाल मिलती है हसर के मीनिंग की। हाँ जी, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, इसमें हमें मिसाल मिलती है सूरतुल बकरा की शुरू की आयात में, एक और हमें हसर के रिलेटेड आया है, इन्नहुम हुमुस सुफहाउ। इन्नहुम दमीर है मुब्तदा और अस्सुफहाउ खबर है, और जब हम बीच में एक दमीर ऐड कर देंगे इन्नहुम के मुताबिक, तो फिर इसमें जो तख़सीस का और हसर का मफहूम है वो ऐड हो जाएगा। आया नंबर 12 में आपको मिल रहा है इन्नहुम हुमुस, आया नंबर 12 में एक और मिसाल है, इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदूना, के बेशक वही लोग फसाद करने वाले हैं। अब ये अल्लाह ताला कह रहे हैं उन लोगों के बारे में जब उनसे कहा जाता है, जैसे हम 11 नंबर आया में देखें, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ। اب یہاں پہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے یعنی منافقین سے کہ تم لوگ فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم ہی صلح کرنے والے ہیں۔ آیا نمبر یہ آپ کے پاس 11 ہے، انما نحن مصلحون، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ انما ضمیر مبتدا اور پھر اس کے بعد نحن ہمارے پاس ایک ضمیر آ رہی ہے جو کہ इन्नमा के मुताबिकत में है और फिर मुस्लिहून। हाँ जी बिल्कुल, नहनु मुस्लिहून नहीं, ये जो नहनु मुस्लिहून है ये थोड़ा मेरा ख्याल है इसमें तख्सीस है, लेकिन इसमें तख्सीस वो वाली है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी इन्नमा के साथ, जैसे हमने देखा था ना कि तख्सीस ताकीद और तख्सीस दोनों चीजें आ जाती हैं, लेकिन जो आज हम तख्सीस का मफहूम पढ़े हैं वो आपको आया नंबर 12 में मिलेगा, अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदूना। मुझे एक मिनट देंगे। انہم ہم المفسدون، کہ بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے۔ تو یہاں پہ آپ کو حسر کا مفہوم مل رہا ہے کہ انہم ہمارے پاس ایک ضمیر ہے اور اس کے بعد جو ہم نے ضمیر ایڈ کرنی تھی وہ ہم والی ہے، اور پھر المفسدون ہمارے پاس الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، تو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ یہ اب منافقین کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تخصیص کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم ہی لوگ فساد کرنے والے ہو۔ پھر آیا نمبر 13 کے اینڈ میں دیکھیں، آپ کو بالکل اسی طریقے سے آپ لوگوں کو ایک اور حسر کے مفہوم کا سینٹنس ملے گا کہ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور یہ بھی تخصیص کے ساتھ۔ ہاں جی، اب اس میں دیکھیں جیسے ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، کہ ہم ویسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ، اور یہ چیز آپ لوگوں کو آج کے دور میں بھی اس طرح سے سننے کو ملتی ہے کہ جب آپ دین کو زیادہ سیریس لے کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہو، تو اس وقت تو یعنی منافقین یہ بات کہتے تھے, لیکن آج کل آپ دیکھیں تو نان مسلم آپ کو شاید بخش دیں, لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں وہی آپ لوگوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا کیا ایکسٹریمسٹ اب بننے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کی باتیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا رویہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہم کا رویہ ہم دیکھیں کہ وہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ صدقہ کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کی, جیسے ایک جنگ کے موقع پہ ضرورت پڑی تھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا تمام سامان لے آئے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لیا ہے. تو یہ سب چیزیں دنیا کے اعتبار سے بے وقوفوں والی لگتی ہیں, لیکن جب آپ اس کو آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا کوئی آؤٹ پٹ نظر آتا ہے. تو چونکہ منافقین دنیا ہی کی زندگی کو زیادہ امپورٹنس دیتے تھے اور ان کے لیے صرف وہی زندگی سب کچھ تھی, تو وہ کہتے تھے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون, کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں اور ان لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ بے وقوف, بے وقوفی والا کام تو اصل میں یہ لوگ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمیں ایک اور مثال قرآن مجید میں ملتی ہے, سورۃ العنکبوت کی آیہ نمبر 64 میں ہمیں یہ مثال ملتی ہے, ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. یہ مثال ہمیں سورۃ عنکبوت میں ملتی ہے آیہ نمبر 64. اب یہاں پہ آپ کو تاکید کے لیے انا شروع میں ملے گا, پھر اس کے بعد لام تاکید بھی ہے لہیہ, اور آپ کو جو حسر کا مفہوم ہے وہ بھی مل رہا ہے کہ آپ کی جو خبر ہے وہ معرفہ ہے, اور آپ کو ایک ضمیر بھی مل رہی ہے ہیا کی. تو اس ساری چیزوں کے اعتبار سے آپ کو اس جملے میں بہت زیادہ تاکید بھی, دو تاکیدی چیزیں ہیں آپ کے پاس, انا بھی اور لام تاکید بھی اور حسر بھی. تو اب ان سارے مفہوم کے ساتھ جب آپ اس آیا کو پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان, کہ آخرت کی زندگی ہی آپ کی اصل زندگی ہے, اصل اس کی حیات ہے, یعنی جو آپ زندگی گزاریں گے وہ آخرت کی زندگی ہی ہے. تو یہ سب چیزیں جب انسان کو پتہ چلتی ہیں, جو گرامر کے رولز جب آپ پڑھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو وہ بالکل جملے کا ایک جو اثر ہوتا ہے وہی بدل دیتی ہے. کہ آپ عام سینٹینس, عام ٹرانسلیشن پڑھیں تو آخرت کی زندگی ہی اصل میں زندگی ہے, لیکن جب آپ رولز پتہ چلیں آپ کو, انا اور لام تاکید اور پھر حسر کا مفہوم, تو اس سے اس جملے کا بالکل مفہوم انسان کو بدلا ہوا فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اسی میں ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو خبر مبتدا ہوتی ہے وہ عام طور پہ معرفہ ہوتی ہے, لیکن اس کی ایکسیپشن ہم نے یہ دیکھی تھی کہ جب ہمارے پاس جار مجرور شروع میں آ جاتے ہیں اور مبتدا کو ہم مؤخر کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو نکرہ کر لیتے ہیں, کیونکہ جب ہم نے مبتدا کو نکرہ لانا ہمارا مقصد ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ اسلوب ہوتا ہے کہ ہم مبتدا کو مؤخر کر لیں. جیسے آپ نے جار مجرور کے حوالے سے دیکھا تھا کہ فی قلوبہم مرضون, فی قلوبہم میں آپ کے پاس جار مجرور پہلے آ گیا اور مبتدا آپ کے پاس نکرہ بعد میں آ گئی. تو اسی طرح ہمارے پاس عام طور پر جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے, لیکن بعض دفعہ وہ معرفہ بھی آتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے, ھذا کتابک. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہماری خبر ہے وہ ہماری معرفہ ہے, اور وہ ہماری معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی میں ہم لوگوں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جو ہمارے پاس مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں, یا وہ ہمیں شو کرتا ہے کہ یہ جو ترکیب ہے ہماری, یہ معرفہ کی کنسٹرکشن ہے یا نکرہ کی کنسٹرکشن ہے. کیونکہ جو مضاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس الف لام کے بغیر آتا ہے اور ایک اعراب کے ساتھ آتا ہے, منون نہیں ہوتا بلکہ سنگل اس کا اعراب ہوتا ہے. تو جو ہمارے پاس مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس مضاف الیہ ضمیر ہے, اور جو ضمائر ہیں وہ سارے हमारे पास इसम मारिफा की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जो किताबुक है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन मारिफा कंस्ट्रक्शन है, तो हाजा किताबुक, ये अब इसमें हमें खबर को मारिफा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम जब हाजा के मुताबिक एक दमीर ऐड करेंगे, हुआ की सिंगुलर दमीर ऐड करेंगे, तो हाजा हुआ किताबुक जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास तख़सीस का मफहूम इसके अंदर आ गया। तो जब हमारे पास खबर मारिफा हो तो हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का ये जो जुमला इस्मिया में तख़सीस का मफहूम है, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब इसी में एक कंस्ट्रक्शन मैं आपको देती हूँ, आप उसको चेंज करें हसर के मफहूम के अतबार से। अल आखिरतु दारुल करार, अल आखिरतु दारुल करार, एक्चुअली मैं लिखना चाह रही हूँ लेकिन मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे। ओके, अल आखिरतु सॉरी दारुल करार, अब इसमें आपने जो दमीर ऐड करनी है वो हिया की करनी है, इसलिए क्योंकि हमारे पास अल आखिरा है और ताए मरबूता है, तो अल आखिरतु हिया दारुल करार। जी बिल्कुल, दारुल करार को हम नहीं चेंज करेंगे, इसलिए क्योंकि ये हमारे पास मुरकबे इजाफी में मारिफा कंस्ट्रक्शन है। ये यहाँ पर अल करार है, क्योंकि इसमें अलिफ लाम है हमारे पास, तो ये हमारे पास मुरक्कबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन है जो कि मारिफा कंस्ट्रक्शन है। आखिरतु हियादारुल करार, ठीक है। ये हमारे पास जुमला इस्मिया में जो हसर का मफहूम है ये क्लियर हो गया। अब जुमला इस्मिया में नफी का मफहूम, उसको आपने किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना हो, या अगर आपको कुरान मजीद में मिले तो आप उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक आम सादा जुमला है, ज़ैदुन सालिहुन, के ज़ैद साले है। अगर इसको हम नफी जुमला बनाना चाहते हैं, इसमें हम नफी का मफहूम पैदा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम माँ या लईसा का इस्तेमाल करेंगे, माँ या लईसा। ये दोनों जो लफ्ज़ हैं ये नहीं के मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। माँ भी, माँ के खैर बहुत सारे और मफहूम भी होते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको यही रखें कि माँ जो है वो नहीं के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में हर माँ नहीं के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो ये फिर आपको जब आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट होता है ये आपको बताता है कि यहाँ पर ये माँ नहीं के मीनिंग में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो माँ और लईसा ये दो लेटर्स हैं जो हम जुमले के शुरू में ऐड कर देते हैं, जिससे जुमले में नहीं का मफहूम पैदा हो जाता है। अब हम लईसा को थोड़ा सा डिस्कस नहीं करेंगे इस क्लास में, क्योंकि हाँ जी, उस सेंटेंस को अभी हम चेंज करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि माँ के क्योंकि इफेक्ट भी होते हैं सेंटेंस के ऊपर, तो वो भी मैं आपको डिफाइन करूँगी। तो लईसा आप सिर्फ जहन में रखें कि जो लईसा है वो नहीं के मीनिंग में आता है, लेकिन अभी हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लईसा फेल की तरह रिएक्ट करता है, तो इसकी शक्लें चेंज होती हैं, ये हर बार लईसा नहीं होता बल्कि इसकी शक्लें चेंज होती हैं। तो ये लेटर ऑन जब आप फेल पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके तो समझने के काबिल होंगे। अभी हम सिर्फ माँ को लेके चलते हैं कि माँ सेंटेंस के स्टार्ट में हमने ऐड कर देना है और माँ का इफेक्ट हमारा खबर के ऊपर होगा कि जो माँ नहीं नेगेटिव मीनिंग देने वाला जो माँ होता है वो हमारा खबर के ऊपर रिएक्ट करके उसको हालत नसब में ले जाता है। इससे पहले हमने देखा था कि हमारी जो मुक्तदा होती है वो जब इस्मो इन्ना बनती है तो वो हालत नसब में जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो खबर है वो जब खबर हो माँ बनती है, क्योंकि ये जो सेंटेंस के स्टार्ट में हम पढ़ रहे हैं वो फिर जुमले को पूरे ओन कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर जब हम माँ जईदुन सॉलिहन कहेंगे तो यहाँ पे मुक्तदा खबर नहीं होगी बल्कि खबर इन्ना और खबर माँ और इस्मु माँ हो जाएगा, ये जईदुन जो है वो इस्मु माँ हो जाएगा और सॉलिहन खबर माँ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो खबर है वो हालत नसब में चली जाएगी। माँ जईदुन सॉलिहन, हाँ जी अलिफ इसके साथ हम ऐड करेंगे क्योंकि फतहा तनवीन में हमेशा अलिफ एंड में आता है। ठीक है, अब इस जुमले में ये हमारे पास अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, जुमला इस्मिया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें अगर हम ताकीद पैदा करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा कि हम खबर से पहले यानी जो खबर माँ है उसके साथ हम बा लगा देंगे और वो बा हमारे पास कौन सा होगा जो हुरूफे जार में से है। तो हमारे पास जो सेंटेंस है उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होगी कि माँ जईदुन हालत रफ में होगा जईद और बी के बाद हमारा जो सॉलिह है वो सॉलिहन नहीं रहेगा बल्कि सॉलिहिन हो जाएगा कसरा तनवीन के साथ। माँ जईदुन बी सॉलिहिन खबर के साथ हम बा लगाएंगे और अब इस जुमले का माँ जईदुन सॉलिहन यानी जैद साले नहीं है, लेकिन जब हमने इसके साथ बी का ऐड किया हमने खबर माँ के साथ माँ जईदुन बी सॉलिहिन के जैद हरगिज साले नहीं है, तो यहाँ पर हरगिज का मफहूम इसके अंदर आ गया है, एक ताकीद पैदा हो गया इस जुमले के अंदर कि आपने बिल्कुल कतई तौर पर उस चीज़ की नफी कर दी कि जैद जो है वो बिल्कुल भी सॉले नहीं है। तो अब यहाँ पे सूरतुल बकरा की शुरू की आयात में हमारे पास एक मिसाल आती है वमा हुम बिमुमिनीन, तो ये जो बा के साथ या है ये नहीं होगा बल्कि बा डायरेक्ट सौत के साथ जुड़ा हुआ होगा और हा के बाद अलिफ नहीं होगा। मा जईदुन बी सॉलिहिन, ठीक है। अब जैसे हमारे पास वमा हुम बिमुमिनीन, इसमें जो हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस जुमला इस्मिया जो बन रहा है वो क्या है कि हुम मुमिनून, इसमें जब हमने इसको नेगेटिव किया तो क्या हो गया मा हुम, इसको हमने हालत नसब में लेकर जाना है मुमिनीन, मा हुम मुमिनीन लिखेंगे और फिर जब हम बा का एड एडिशन करेंगे तो कैसे होगा कि मा हुम बी मुमिनीन, क्योंकि मुमिनीन हमारे पास हालत नसब में भी मुमिनीन है और हालत जर में भी। लेकिन अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ कि जब आपके पास एक सेंटेंस आ रहा है कि मा हुम मुमिनीन, इस जुमले में जो मुमिनीन है क्योंकि हमारे पास जो फतहा या नून है वो हालत नसब के लिए भी होता है हालत जर के लिए भी होता है, हाँ जी। तो मा हुम मुमिनीन में मुमिनीन की क्या एराबी हालत है, मा हुम मुमिनीन में अभी हमने बा की एडिशन नहीं की, मा हुम मुमिनीन बिल्कुल हालत नसब। और जब हम इसको बाकी एडिशन के साथ करेंगे मा हुम भी मुमिनीन, तो यहाँ पर मुमिनीन की क्या इराबी हालत है? हाँ जी हालत है जब, अब यहाँ पे आप देखें कि शुरू में हम एक चीज़ जब हमने पढ़ी तो बहुत कंफ्यूजन वाली थी कि यहाँ पे हालत नसब और हालत जर की बहुत सारी हमने कंडीशंस ऐसी पढ़ी जिसमें वो बिल्कुल सेम उनके अल्फाज थे, एक ही लफ्ज़ है, वो हालत नसब को भी शो कर रहा है हालत जर को भी। तो अब आपको थोड़ी बहुत इस चीज़ की पहचान होगी कि कहाँ पे कौन सा जो लफ्ज़ है वो हालत नसब में है और कौन सा हालत जर में है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको डिफाइन करूँ कि जो बा है उसका तर्जुमा नहीं होगा जब आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे मा हुम भी मुमिनीन। तो हमने जैसे जब हम हरूफ जारा पढ़े थे उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि हर बार हमारे इन लेटर्स का कोई मीनिंग नहीं होता, बाज़ दफ़ा ये मीनिंग के साथ होते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा ये एडिशनल होते हैं, इनका कोई मानी नहीं होता। यहाँ पे भी आप इसको जब किसी ग्रामेटिकल बुक्स में पढ़ेंगे जो ग्रामेटिकली तफासीर होती हैं कुरान मजीद की, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी कि ये बा जायदा है, यानी बा जायदा का क्या मतलब है कि इसका मफहूम कोई नहीं है और इसका इफेक्ट क्या है कि ये यहाँ पर ताकीद लेकर आ रहा है कि वो हरगिज भी ईमान वाले नहीं है। और ये भी मेरा ख्याल है कि जो मुनाफिकीन हैं उनके बारे में ये चीज़ बयान हुई है कुरान मजीद की जो शुरू की आयत है उनमें। फिर इसी तरह हमारे पास एक और जुमला है वो मैं आपको लिखती डिक्टेट करती हूँ, आप उसका मुझे ताकीद और नफी का मीनिंग उसके अंदर पैदा करके फिर उसको लिखें। अल्लाहु सॉरी, अगर हम इसको जुमला इस्मिया प्रॉपर बनाएंगे तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो हम इसको यानी माँ के मफहूम और ताकीद के मफहूम के साथ ही देखते हैं। वमा अल्लाहु बिगाफिलिन, यहाँ पे हमारे पास माँ नफी वाला है और बी आ गया गाफिल के साथ जो कि हमारी खबर थी, और फिर जो खबर माँ थी उसके साथ जब हमने बी ऐड कर दिया तो वम अल्लाहु बी गाफिलिन। तो यहाँ पर इस जुमले का क्या मफहूम बनता है कि अल्लाह ताला हरगिज भी गाफिल नहीं है, यानी एक ताकीद का मफहूम आ गया है इस जुमले के अंदर कि वम अल्लाहु गाफिलन एक आम जुमला है कि जिसमें अल्लाह ताला गफलत करने वाले नहीं हैं, गाफिल नहीं है, लेकिन जब हम बा ऐड कर देते हैं तो अल्लाह ताला हरगिज भी गाफिल नहीं है, ये उस जुमले के अंदर और ताकीद पैदा कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी सूरतुल कलम आप निकालें जो कि 29th पारा में है, उसमें हम देखते हैं हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी जुमला इस्मिया के अतबार से और कुछ ऐसे रूल्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको भी हम देखेंगे जो आएंगे। सूरह कलम है, सेकंड सूरह है 29th पारा में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون حروف مقطعات والقلم। अब यहाँ पर वाव जो है हमारे पास हरूफ जारा वाला है क्योंकि इसने अपने बाद आने वाले इस्म को चेंज कर दिया और यहाँ पर कलम की कसम खाई जा रही है। वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। अब यहाँ पे आप देखें कि इस जुमले में आपको माँ भी मिल रहा है जुमला इस्मिया के शुरू में और जो हमारी खबर व माँ है मजनून उसके साथ बा भी मिल गया, यानी एक जुमला इस्मिया जुमला नेगेटिव सेंटेंस भी है और इसमें ताकीद भी है। ठीक है, माँ अंता बिनी अमती रब्बी का बी मजनून। अब यहाँ पे इस जुमले को आप थोड़ा सा गौर करें तो मुझे ये बात बताएं कि ये जो बिनी अमती रब्बी का है इसकी इस जुमले में क्या हैसियत है? बिनी अमती रब्बी का इस जुमले में किस हैसियत के साथ आ रहा है? हाँ जी एग्जैक्टली, ये मुतालिक खबर है। यहाँ पे हमारे पास माँ है जो कि नहीं के मीनिंग में आ रहा है। फिर जो ताकीद वाला भी है वो हमारे पास मजनून के साथ है। इसमें आप इस चीज़ को देखें कि जो हमारे पास खबर है यानी जो माँ की खबर है उसके साथ हम बाप की एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास एक बिल्कुल मुब्तदा और खबर के अतबार से एक जुमला बन रहा है वो अंता मजनूनुन है। ठीक है, अंता मजनूनुन मुब्तदा और खबर। इसमें जब आपने मुतल्लिक खबर ऐड किया तो क्या हो गया, अंता बिनिअमति रब्बिका मजनूनुन। फिर इसमें जब हम माँ नाफिया लेकर आए हैं, नेगेटिव सेंटेंस हमने इसको बनाया, तो ये कैसे हो गया, माँ अंता बिनिअमति रब्बिका मजनूनुन। अब हम जब इसमें ताकीद पैदा करेंगे तो हम बा किसके साथ ऐड करेंगे, माँ की खबर के साथ, माँ अंता बिनिअमति रब्बिका बी मजनून। ये इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर थर्ड आया को आप देखें तो इसमें हमारे पास व इन लका लअजरन गैर ममनून। यहाँ पे हमारे पास मुब्तदा और खबर अगर हम इसमें से निकालें इस जुमले में से तो लका अजरन ये हमारे पास बन रहा है। और इसमें फिर आप देखें कि मुब्तदा जो है सॉरी जो जुमला शुरू हो रहा है वो हमारे पास जार मजरूर से हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो मुब्तदा है वो मुअख्खर है और अजरुन मुब्तदा है और लका खबरुन है खबर है, मुतलिक खबर है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास खबर मौजूद नहीं है इसलिए हम लका को खबर कह सकते हैं, मुतलिक खबर भी कह सकते हैं और खबर भी कह सकते हैं। फिर इस सेंटेंस के शुरू में जब हम इन्ना लगाएंगे तो वह इन्ना लका अजरुन गैर ममनून। फिर इसके बाद नेक्स्ट आया को हम देखते हैं व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अब यहां पे से अगर हम एक मुब्तदा और खबर वाला आम जुमला निकालें तो हमारे पास क्या बनता है, अंता अला खुलुकिन अज़ीम। फिर अंता में जब हम इन्ना ऐड करेंगे ताकीद के लिए तो इन्नका अला खुलुकिन अज़ीम, और जब हम लामे ताकीद ऐड कर देंगे तो व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये हमारे पास बन जाएगी इसकी कंस्ट्रक्शन जो इस आया नंबर 4 में आ रही है कि इस जुमले के अंदर ताकीद भी है इन्ना की और लामे ताकीद भी है, यानी इसमें डबल ताकीद है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की अजमत जो कुरान मजीद में आ रही है वो आप देखें कि कितने ज़्यादा एम्फसाइज हुआ गया इस आया के अंदर उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की, कि पहले ही अखलाक के साथ एक जो सिफा लगाई गई है वो खुलुक अज़ीम है, अज़ीम उसकी सिफत लगाई है, फिर ताकीद के साथ इन्ना और फिर लामे ताकीद दिया हुआ है। और आप फिर एक चीज़ देखें ना कि शुरू आयात शुरू जो कसम के साथ हो रही है वो भी एक डिफरेंट इम्पैक्ट लेकर आती हैं जो बाद में चीज़ें आती हैं, यानी जो भी आयात बाद में आ रही होती हैं उनके ऊपर जो शुरू की कसम है वो भी एक इफेक्ट ला रही होती है उनके मीनिंग की ताकीद में। और उसके साथ फिर इन्ना और लामे ताकीद। ठीक है, अब हमने जैसे देखा कि जुमला इस्मिया में ताकीद के लिए हमने माँ को डिस्कस किया है, और फिर जुमला इस्मिया में जो मनफी जुमला है हमारे पास यहाँ पर माँ के साथ उसमें फिर हमने जब बा का एडिशन की तो उसमें ताकीद और ज़्यादा होगी। तो अब हमारे पास एक और हर्फ है जो हम ऐड करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए और वो है ला। लेकिन ला की एडिशन जब हम मुब्तदा और खबर के लिए करते हैं तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि जो इसम आता है यानी इस्मुला, क्योंकि अब वो मुब्तदा और खबर नहीं रह जाते बल्कि जब हम इन हरूफ को शुरू में ऐड कर रहे हैं तो वो फिर ऑन कर लेते हैं पूरे जुमले को। तो जब हमारे पास लाम जुमला इस्मिया के शुरू में ऐड होगा तो जो इस्मुला होगा वो क्या हो जाएगा, नकिरा हम उसको लिखेंगे, कभी भी वो मारिफा नहीं लिखेंगे। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं कि अर्रजुलु मुज्तहिदुन, ये एक सादा जुमला इस्मिया है रजुलू मुजतहिदुन। जब हम इसके शुरू में ला ऐड करेंगे तो उसने क्या कर देना है कि जो रजुल है उसको नकिरा कर देना, इस्मु ला नकिरा हो जाएगा और मुब्तदा के ऊपर उसका वही इफेक्ट होगा कि वो मुब्तदा जो है वो हालत नसब में चली जाएगी। तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या बनेगी कि ला रजुलुन मुजतहिदन। ला रजुलुन मुजतहिदन कि कोई भी जो आदमी है वो मेहनत करने वाला नहीं है, मुजतहिद नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन इसी हवाले से जुमला इस्मिया के शुरू में ला के साथ हमें एक मिलती है मिसाल सूरह बकरा के शुरू में ला रईब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। तो उसमें आप देखें कि जो रईब है उस पर फतहा आ रही है, इसमें जब तो इसमें हमारे पास क्या है कि जैसे ला रईबा जब हमारे पास हालत नसब में आ जाएगी यानी फतहा के साथ हमें हमें कोई लेटर मिल हर्फ मिल रहा लफ्ज़ मिल रहा है लाम के बाद और वो नकिरा है क्योंकि रईबा हमारे पास नकिरा है लेकिन हालत नसब में है और तन्मीम भी नहीं है इसके ऊपर ला रईबा। तो इस तरीके के साथ जब आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगी, अब इसमें तीन चीजें आप राइट कर लें कि जब आपके पास ला के बाद जो इस्मु ला है वो नकिरा कंस्ट्रक्शन हो, दूसरी बात क्या कि वो हालत नसब में हो और तीसरी चीज क्या कि वो मुनव्वन ना हो, उसके ऊपर तनवीन ना हो। रईबा में ये तीनों चीजें हैं। तो इस जुमले के मीनिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो रईब की तमाम जिन्स की नफी कर देता है कि किसी किस्म का कोई शक नहीं है कुरान मजीद में। ला रईब फीही में जो ही की दमीर है वो कुरान मजीद की तरफ जा रही है कि इसके अंदर कोई शक नहीं है। रईबा में जो तीन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि लाम के बाद जब आपके पास जो इस्मु ला है उसको नकिरा होना चाहिए, दूसरी बात वो हालत नसब में होना चाहिए और तीसरी बात वो मुनव्वन ना हो, तनवीन के साथ ना हो। नकेरा हालत नसब और गैर मुनव्वन तनवीन के साथ ना हो। ये तीन चीजें जब इस्मु ला के अंदर पूरी आ जाती हैं तो उस सेंटेंस में क्या मीनिंग पैदा होता है कि वो पूरी जिन्स की नफी कर देता है। ला रईब फीही किसी किस्म का कोई शक नहीं है। अब इसी तरह जैसे हमारा जो कलमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसमें आप देखें ला के बाद जो इलाहा है थर्ड वन ये है कि उसमें तनवीन नहीं होगी। तो इलाहा में आप देखें कि तीनों चीजें पूरी हो रही हैं, इस्मु ला है, इसमें क्या है कि नकिरा है, दूसरी बात हालत नसब में है इलाहा और तीसरी चीज उसके ऊपर तनवीन नहीं है। तो यहाँ पे हर किस्म के इलाह की नफी हो रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह के कोई भी इलाह नहीं है, किसी इलाह के हर जिन्स की, वो इंसानों में से है, वो जैसे हिंदुइज्म में कुछ जानवरों को भी किया जाता है, तो हर जिन्स की इलाह के नकरा हो जा आप उसकी नफी कर देते हैं जब आप कहते हैं ला इलाहा। जब ला के बाद आपके पास ये तीनों शुरूत के साथ एक इस्मु ला आ रहा हो तो हर इलाह की हर जिन्स की नफी हो जाती है उस से रिलेटेड। तो ये जो बात है कि पूरी जिन्स की नफी हो जाती है ये आप लोगों को क्लियर हो गई है कि ला रईब फीही हर किस्म का शक खत्म हो गया, छोटा है बड़ा है किसी भी चीज का है, तो जिन्स की जो शक की पूरी जिन्स है उसकी नफी हो रही है। और ला इलाहा में हर किस्म के इलाह की नफी हो रही है, पूरी इलाह की जिन्स की नफी हो रही है, इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा। ला रजुलुन मुजतहिदन में तो आप देखें कि ये एक आम जुमला है ना, आम नेगेटिव सेंटेंस आप इसको कह सकते हैं कि जब आपके पास ला किसी सेंटेंस जुमला इस्मिया के शुरू में आता है तो जो इस्मु ला है वो नकिरा होगी तो वो रजुलुन होगा। यानी ला रजुलुन मुजतहिदन आपके पास सिंपल जुमला है जो कि मनफी है, गलत नहीं है इसकी कंस्ट्रक्शन, लेकिन जब आप उसको ये कह दें कि ला रजुला, यानी आप इसको नकेरा भी कर रहे हैं, गैर मुनव्वन भी कर रहे हैं और फतहा के साथ हालत नसब में कर रहे हैं, तो ला रजुला जब आप कहते हैं तो जो रजुल है उसकी हर पूरी जिंस की नफी हो जाती है। तो इन दोनों जुमलों में फर्क क्या है कि ला रजुल मुश्तहिदन कोई भी आदमी मेहनत करने वाला नहीं है, लेकिन जब आप कहते हैं ला रजुला मुश्तहिदन तो जो आदमियों की पूरी जिंस है उसकी नफी हो गई है। ठीक, इसमें थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस आ रहा है। फिर इसी तरीके से जैसे हम लोग एक आयत में भी ये आता है कि मैं यहदिहिल्लाहु फला मुबिल्ला लहू, तो फला मुबिल्ला, यहाँ पे आप देखें कि लाम के साथ जो मुबिल्ला है यानी गुमराह करने वाला, और हर किस्म के गुमराह करने वाले को इसमें आप पूरी जिंस की नफी कर देते हैं कि जब अल्लाह ताला हिदायत दे दे तो फिर कोई आपको गुमराह करने वाला नहीं रहता, चाहे वो शैतानों में से है, चाहे वो इंसानों में से है, चाहे वो पूरी जिंस जो गुमराह करने वाली है ना उससे आपको एग्जाम्प्ट कर दिया। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुबिल्ला लह। और इसी तरीके से हमारे पास एक आयत हदीस आती है ला ईमान लहु लिमन ला अमानत लहु, तो यहाँ पे आप जब देखें कि ला ईमान, इसमें जब हमारे पास ईमान जो इस्मू ला है उसके अंदर हमें ये तीनों चीजें मिल रही हैं कि कोई ईमान की पूरी जिंस की नफी हो गई, ला ईमान लहु लिमन ला अमानत लहु। अब आप यहाँ पे अमानत की जो एक अहमियत है उसको आप फील कर सकते हैं इस हदीस के पोर्शन में कि किसी किस्म का कोई ईमान ही नहीं है, ईमान की पूरी जिंस की नफी हो गई जिसके पास अमानत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है अमानत। और उसके बाद ला दीन लहु लिमन ला अहद लहु, कि अब यहाँ पे भी आप देखेंगे जो दीन हमारे पास इस्मु ला है वो तीनों शुरूत को पूरा कर रहा है, तो दीन के हर जिन्स की नफी हो जाती है। और उस इस सेकंड जो पोर्शन है उससे हमें अहद की पासदारी का पता चलता है कि ला दीन लहु लिमन ला अहद लहु, कि अहद इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि जब इंसान उसमें कमी करने शुरू हो जाता है तो उसके दीन की पूरी जड़ खत्म हो जाती है। और इसी तरीके से हमें एक और हदीस में जो कि साये के लिए मिलता है हमें कि क्यामत के दिन कोई साया नहीं होगा, तो उसमें भी हमें जो कंस्ट्रक्शन मिलती है वो ला विल्ला, वहाँ पे जो विल्ला है वो हमें हालत नसब नखेरा और तनवीन के बगैर मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि किसी किस्म का कोई साया नहीं होगा। एक होता है दरख्त का साया, बाज़ दफ़ा हम छतरियाँ रख लेते हैं या किताब या इवन कुछ लोग कपड़ा भी सर के ऊपर रखते हैं, तो क़यामत के दिन किसी किस्म का कोई साया नहीं रहेगा, छोटा बड़ा किसी चीज़ को आप साये के तौर पे नहीं फील कर सकते। तो उस दिन फिर अल्लाह ताला के अर्श के साये में जो सात फिर आगे कैटेगरीज बताई गई हैं वो हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे भी आप इस हदीस की शिद्दत को महसूस कर सकते हैं इस चीज़ के साथ के ला विल्ला कोई साया नहीं है, विल के पूरी जिंस की नफी हुई है यहाँ पे। और इसी तरह हमें एक मिसाल सूरह यूसुफ में मिलती है ला तसरीबा, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कहा था कि तुम लोगों के ऊपर कोई मलामत नहीं है, यानी उन लोगों को जब बिल्कुल हर चीज़ से माफ़ किया, तो जो अल्फाज हमें मिलते हैं ला तसरीबा उसमें भी हमारे पास जो इस्मुला है उसमें हमें ये तीनों शुरूत मिलती हैं, यानी मलामत की पूरी जिंस की नफी कर दी, एक जो माफ़ करने की आला मिसाल है वो हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस कॉल में मिल रही है। और यही बिल्कुल चीज़ हमें फतह मक्का के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये अल्फाज किए थे कि आप देखें कि जब आप सीरा पढ़ते हैं तो आपको मिलता है कि जो शुरू किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जो टाइम गुजारा उसमें किस किस तरह के मजालिम हुए, यानी जो शेव अबी तालिब है उसमें तो जुल्म की इंतहा हो जाती है कि कुछ खाने को नहीं कुछ पीने को नहीं, लोग दरख्तों की जो ये चीज़ें पत्ते और उनकी जो तने की ऊपर से जो वो एक खाल सी होती है वो खाना, और इतने बुरे हालात उन लोगों के जो तमाम शेव अबी तालिब में लोग थे उनके हो गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माफ किया उनको फतह मक्का के मौके पे, तो आपने सेम यही वर्डिंग यूज की, ला तसरीबा, कि तसरीब मलामत की पूरी जिंस की नफी हो गई। तो यहाँ पे हमें अखलाक का पता चलता है कि कितना अजीम अखलाक है। हम इसी सारी चीज के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। अगर कोई सवाल हो किसी का तो आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये सूरह यूसुफ में है। हाँ जी, यहाँ पे भी ला हौला वला कुव्वता, कि हर किस्म की नेकी देने की ताकत और बुराई से बचने की ताकत ये अल्लाह ताला ही की तरफ से है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.